भक्ति से भी बढ़कर भक्ति, ये चौथे अध्याय का शीर्षक है। इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि भक्ति करने की जो पात्रता है या अधिकार है वो है भक्तों की कृपा, और वैदिक भक्ति में विशेष करके आगे बढ़ने के लिए भक्ति शास्त्र में पूरा विश्वास होना आवश्यक है। और जितनी अधिक हमारी श्रद्धा है हमारा अधिकार भी उतना ही होगा। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये तीन वर्ग हैं, श्रेणियां हैं वैदिक भक्ति में भक्तों के, और ये इस पर निर्भर होते हैं कि हमारी श्रद्धा कितनी है भक्ति शास्त्रों में। साथ साथ भक्ति करने के लिए यह भी अधिकार की आवश्यकता है कि हम देहात्म बुद्धि से परे हो जाएं, भौतिक उपाधियों को त्याग कर केवल अपने आप को श्री कृष्ण का दास मानकर आगे चलें। तो ये तीसरे अध्याय के मुख्य पॉइंट्स थे। चौथे अध्याय में श्री रूप गोस्वामी कम से कम ऐसे 20 या 21 से 22 उदाहरण ऐसे दे रहे हैं, विशेष करके श्रीमद् भागवत से और अन्य ग्रंथों से भी, ये साबित करने के लिए कि भक्ति मुक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, बल्कि भक्ति के सामने मुक्ति तो तुच्छ है। और ऐसे प्रमाणों को सामने रख के रूप गोस्वामी इस सिद्धांत की स्थापना ऐसे करना चाहते हैं, इतनी दृढ़ता से करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका सामना न कर पाए, कुछ विपरीत सिद्धांत सामने न रखे, और कोई विपरीत सिद्धांत सामने रखे भी तो इतने सारे प्रमाण यहां पर रखे हैं कि कोई कुछ कह नहीं पाएगा। क्योंकि ये ग्रंथ का नाम ही है भक्ति रसामृत सिंधु, तो भक्ति की श्रेष्ठता, भक्ति का प्राधान्य, इसको साबित कर दिखाना इस किताब का एक उद्देश्य है। साथ साथ में भक्ति के रहस्य का भी वर्णन श्री रूप गोस्वामी कर चुके हैं। तो कल हम पहले इस प्रमाण को देख चुके हैं, पृथ्वी महाराज का उदाहरण है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से आपके अमृतमय कथाओं का श्रवण करते रहूं, और इस चीज के लिए मैं कामना करता हूं 10 लाख कानों की, और जब अगर ऐसा अवसर मुझे मिलेगा तो मुझे मुक्ति की भी कोई कामना नहीं है, मैं परवाह नहीं करता मुक्ति की। इसका मतलब है कि भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करना ये मुक्ति से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो इतने सारे मुक्त पुरुष भी होंगे अगर कहीं, तो उनसे श्रेष्ठ है एक साधारण व्यक्ति जो श्रद्धा पूर्वक भक्तों के संग में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण कीर्तन करता है। भले वो भक्त साधारण भक्त हो, अशिक्षित भी हो, उसने अधिक तपस्या न भी की हो, संस्कृत पंडित नहीं हो, विद्वान नहीं हो, परंतु श्रद्धा है उसकी, और इस श्रद्धा से भक्तों के संग में बैठकर वो श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो वो उन लोगों से श्रेष्ठ है जो कि चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, द्विवेदी हैं, 4 वेदों को, 3 वेदों को, 2 वेदों को जानते हैं, परंतु इतनी तपस्या, अध्ययन वगैरह करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के कथा में आकर्षण नहीं है उनके हृदय में। तो आगे दूसरा प्रमाण रूप गोस्वामी पाद रखते हैं, तो कोई पढ़ेंगे, और ये उदाहरण है राजा भरत का। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से भरत महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, तो कोई पढ़िएगा।
ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के 14वें अध्याय के 44वें श्लोक में कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं, महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को अपनी संतान मित्र समाज राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्यों को कभी स्वीकार नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं।
ठीक है, तो ये श्लोक यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं, यो दुस्त्यजान क्षिति सुतस्वजनार्थ दारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरे सदयावलोकान नैचन्नृभस्तदुचितं महतां मधुद्वेट सेवानुरक्तमनसाम् अभवोऽपि फल्गुः। भरत महाराज के बारे में यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने त्याग किया। क्या त्याग किया? क्षिति सुत स्वजन अर्थ दारान, अपने राज्य को त्यागा, अपने बच्चों को त्यागा, अपने स्वजनों को त्यागा, अपने धन को त्यागा, अपने पत्नी को त्यागा। प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरै ही सदयावलोकाम, कि उनकी उनका ऐश्वर्य इतना था कि सुरवर जो देवता हैं वो भी आशा करते थे कि हमारे पास इतना ऐश्वर्य हो जितना कि महाराज भरत के पास है। नैच्छन नृपस तद उचितम महताम मधुद्विट सेवानुरक्तम मनसा मनसाम अभवोपि फल्गुहो। तो भरत महाराज जो हैं, इन्होंने क्यों ये सब चीजें स्वीकार नहीं की, हालांकि लक्ष्मी देवी तो बहुत ही आतुर थी उनको ये सब देने के लिए, क्योंकि उनका हृदय जो है वो इतना आकृष्ट था भगवान श्री कृष्ण के मधुर गुण और लीलाओं के प्रति कि अभवः अपि फल्गुः। फल्गु मतलब तुच्छ, अभव मतलब मुक्ति, अभव भव मतलब संसार है ना, भव मतलब हम कह चुके हैं, भव का मतलब क्या है? संसार। क्यों ऐसे संसार को भव कहा गया है? संस्कृत में भव मतलब हो जाना, भवति भव, तो हम बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, पुनः बीमार हो जाते हैं, पुनः जन्म ले लेते हैं, तो ये भव, भव सागर। तो अभव का मतलब है इस संसार के परे होना, अर्थात मुक्त होना। तो अभव की अवस्था ये भी फल्गु, इसको भी तुच्छ मान रहे हैं भरत महाराज, क्योंकि सेवानुरक्त मनसाम, सेवा में इतने अनुरक्त थे, इतने मग्न थे, इतनी रुचि आ रही थी उनको कि मुक्ति भी उनके लिए तुच्छ लग रही थी। आगे इसको घुमाएंगे जरा और दूसरा चार्ट लगाएंगे। आगे पढ़िए भागवत के 6वें स्कंध का वर्णन। इन श्लोकों को कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ये श्लोक बहुत रसमय है इसलिए आपको उदाहरण से दे रहे हैं, क्योंकि यहां इन श्लोकों का वर्णन रूप गोस्वामी कर रहे हैं बस। कंठस्थ केवल आपको थोड़े श्लोक करने हैं बस, पांच छह श्लोक हैं, पांच छह श्लोक कंठस्थ कर पाएंगे ना आप सब, प्रयास तो करेंगे। न कपृष्ठम् न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम् न सिद्धिरपुनर्भवम् वा न सिद्धिरपुनर्भवम् वा समञ्जसत्वा विरहस्य कांक्षे। ये कौन कह रहे हैं, पढ़िए आगे, कोई पढ़िएगा, बोलिए पढ़िए।
वृद्धासुर का ऐसा ही कथन है जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। मैंने तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, नहीं आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए।
तो वृत्रासुर ये एक असुर है जो भक्त है। अब ये एक तरह का विरोधाभास है, असुर और भक्त तो दो अलग अलग श्रेणी होते हैं। तो असुर है ये, भक्त है ये, कैसे हो सकता है? परंतु ऐसे हुआ, वृत्रासुर भगवान के भक्त थे असुर देह में होते हुए भी। और कोई उदाहरण आप बता सकते हैं कि असुर देह में जन्म लेने के बाद भी कोई व्यक्ति भक्त हुए? प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, और ये है वृत्रासुर, विभीषण, ऐसे उदाहरण हैं। तो वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं और असुर होते हुए भी उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए अनुसरणीय हैं। बहुत अच्छे उपदेश अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से दे रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? न नाक पृष्ठम, कि ब्रह्मांड का जो छत है, जो ध्रुव तारा, उसकी प्राप्ति हमें नहीं करनी है, मुझे नहीं चाहिए ध्रुव लोक। आपने ध्रुव तारा देखा है आसमान में? आपने कितने भक्तों ने देखा है ध्रुव तारा? हाथ ऊपर कीजिए। कौन सी दिशा में है ध्रुव तारा? ठीक उत्तर की दिशा में। और ये ध्रुव तारा घूमता है ना, गोल गोल घूमता है?
नहीं।
कितने भक्तों ने देखा है घूमते हुए ध्रुव तारा? नहीं घूमता है। क्यों नहीं घूमता? कि उसी जगह रहता है, ध्रुव है, वहीं पर है, बस हिलता नहीं है। बल्कि सारे जितने भी नक्षत्र हैं और सारे ग्रह आदि हैं, वो सब ध्रुव महाराज को केंद्र में रख के घूमते हैं, परंतु ध्रुव नक्षत्र नहीं घूमता। तो ध्रुव लोक पे कौन रहता है? ध्रुव महाराज। परंतु है मूलतः किन का धाम? वो भगवान विष्णु का धाम है। जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, बल्कि तपस्या करने के पहले उनकी ये इच्छा थी। परंतु जब भगवान का दर्शन हुआ तो सारी चीजें भूल गए, वो कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने उनको दिया, कहा कि 36,000 यहां राज्य करो और खूब यहां अपने इंद्रियों को संतुष्ट करो और बाद में तुम मेरे धाम में चले आओगे। तो भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी से ऊंचा राज्य कौन सा मैं दे पाऊंगा इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर? अगर है तो केवल एक ही है, वो मेरा ही राज्य है, मेरा ही धाम है, श्वेत द्वीप। और भगवान ने अपना ही धाम, अपना ही घर उनको दे दिया। देखिए ये है भगवान के गुण। जब भक्त भगवान के पास आते हैं किसी चीज मांगने के लिए तो भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं उस भक्त के प्रति कि वो अपना सब कुछ भक्त को दे देते हैं। अभी अगर समझ लीजिए कि हमारे पास कोई आए कि मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे अस्पताल में जाना है, ये पैसे नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत दवाई भी के लिए पैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। या और कोई कुछ दान मांगने के लिए आए तो कुछ दे भी सकते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे आपको कुछ चाहिए मेरा घर ही ले लीजिए ना, कहेंगे मेरा घर ही ले लीजिए, ले लीजिए, ले जाइए। नाम के लिए कहते हैं आपका घर है, परंतु अगर देने का समय आए तो हिचकिचाएंगे ना, नहीं देंगे इतनी आसानी से। परंतु भगवान ने दे दिया, अपना धाम दे दिया। श्वेत द्वीप विष्णु लोक है जो इस ब्रह्मांड के भीतर है, जिसका ब्रह्मांड का नाश होने पर भी नाश नहीं होता, और ध्रुव महाराज ने उसको प्राप्त किया, इसलिए उस लोक का नाम अभी ध्रुव तारा या ध्रुव लोक हो गया। तो सबसे श्रेष्ठ लोक माना जाता है ये ब्रह्मांड के भीतर। तो वृत्रासुर कहते हैं कि मुझे ध्रुव लोक की प्राप्ति नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम। परमेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी। तो कहते मुझे ब्रह्म लोक नहीं चाहिए और न ही ब्रह्मा जी की तरह मुझे समस्त जो लोक हैं उनके ऊपर कोई राज्य चाहिए, नहीं। न सार्वभौमम, भौम भूमि मतलब पृथ्वी, सार्वभौम मतलब सारे जगत के ऊपर मुझे राज नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, न रसातल तलातल पाताल, ये सबसे निम्न श्रेणी के लोक हैं, उनके ऊपर भी मुझे प्रभुत्व नहीं चाहिए। न सिद्धि, जो अष्टांग योग करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमा लगिमा महिमा आदि, वो सिद्धियां भी मुझे नहीं चाहिए। और फिर न अपुनर्भवम वा, न पहले से, सिद्धि के पहले जो न है उसको हमने यहां जोड़ दिया है। अपुनर्भवम वा, वा मतलब या, न सिद्धि भी चाहिए और अपुनर्भव भी नहीं चाहिए। अब आप बताइए कि अपुनर्भव का क्या मतलब है? मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति क्यों है? अपुनर्भव का शब्द, शब्द का अर्थ मुक्ति क्यों है, कैसे विभाजन कीजिए? पुनर्भव, भव मतलब जन्म मृत्यु, पुनर्भव मतलब पुनर्जन्म लेना, मतलब भव बंधन में फंस जाना, और अपुनर्भव मतलब इससे मुक्त होना, इसलिए अपुनर्भव का मतलब है मुक्ति। तो वृत्रासुर कहते हैं मुझे ये सारे चीजें नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे, ध्रुवलोक की प्राप्ति नहीं, ब्रह्मलोक की, ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं, सारे राज्यों के ऊपर प्रभुत्व नहीं, सिद्धियां नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरहस्य कांक्षे, इसलिए यहां पर वो कहते हैं कि मैं केवल आपके संग या आपके भक्तों का संग चाहता हूं शाश्वत रूप से। समंजस, ये भी एक भगवान को संबोधित करता है, सारे जो अवसरों को प्रदान करने वाले, तो आपकी जो भक्ति करता है उनको सारे अवसर प्राप्त हो जाते हैं, रसाधिपत्य, सार्वभौम, ध्रुव लोक की प्राप्ति, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। केवल मैं आपके विरह को नहीं चाहता हूं, आपसे दूर होना नहीं चाहता, आपकी सेवा मुझे चाहिए बस। अच्छा, आगे अगला चार्ट लगाएंगे। अच्छा, फिर अगला उदाहरण जो प्रमाण है वो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में है। शिवजी अपने पत्नी सती देवी से कह रहे हैं महाराज चित्रकेतु के बारे में। वृत्रासुर ही थे। वृत्रासुर जो है वो अपने पूर्व जन्म में कौन थे? राजा चित्रकेतु। और राजा चित्रकेतु को एक श्राप मिला था। किन्होंने श्राप दिया था? शिवजी ने, पार्वती ने दिया, सती ने दिया, शिवजी ने नहीं। क्यों दिया?
शिवजी के साथ में पार्वती की बैठी हुई थी और इस प्रकार
वे हंस गए, वो हंसे, क्या किए, हंसे और कुछ ऋषि मुनि के साथ में बैठ रहे थे, शायद उनको वैराग्य के बारे में प्रवचन दे रहे थे। निंदात्मक दृष्टि से उपहास कर रहे हैं, ऐसे पार्वती जी को लगा। वास्तव में ये तो भगवान श्री कृष्ण की योजना थी कि पार्वती देवी के हृदय से हृदय में उनको ऐसी प्रेरणा दी कि वो उनको शाप दें चित्रकेतु महाराज को, जो कि एक महान वैष्णव थे, संकर्षण भगवान के वो भक्त थे। तो उन्होंने जैसे ही शाप दिया तो चित्रकेतु महाराज को क्या हुआ, बहुत क्रोध आया?
नहीं,
फिर क्या किया चित्रकेतु महाराज ने? बड़े नम्रता से स्वीकार किया और कहा, हे माते, आपकी इच्छा मुझे पूरी तरह से स्वीकार है कि आपकी चरण धूली लेकर मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। क्या था श्राप? आप असुर योनि में जन्म लेंगे। तो ऐसे बड़े आनंद से चित्रकेतु महाराज ने इसको स्वीकार कर दिया। और जब ये ऐसे हुआ तो शिवजी और पार्वती देवी दोनों आश्चर्यचकित हो गए चित्रकेतु महाराज के गुणों को देखकर। और फिर शिवजी पार्वती देवी से वैष्णवों के गुणों की प्रशंसा करने लगे। देखो, वैष्णव ऐसे होते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं ये इस श्लोक में वो वर्णन करते हैं। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। वो बिभ्यति होना चाहिए, बिभ्यति मतलब डरना। तो शिव जी कह रहे हैं नारायण परः, अर्थात नारायण परः मतलब नारायण परायण, जो नारायण के भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, सर्वे सारे। न कुतश्चन बिभ्यति, कुतश्चन मतलब कहीं भी किसी भी अवस्था में नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य अर्थ दर्शिनः। तुल्य अर्थ मतलब एक समान, समान दृष्टि से देखना, उनकी दृष्टि समान होती है तीन चीजों के प्रति। किन कौन से है तीन जगह, तीन स्थान? स्वर्ग, अपवर्ग, नरक। चाहे वो पृथ्वी लोक में हो, चाहे वो स्वर्ग लोक में हो, नरक लोक में हो, चाहे वो मुक्ति की अवस्था में हो, वो हर अवस्था को एक समान समझते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि क्यों, हर जगह जब भी जाएंगे तो काम एक ही करेंगे। क्या काम करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे, बस, और तो कोई काम है ही नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहां स्वर्ग के बाद कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? अपवर्ग। अपवर्ग मतलब क्या है? भौतिक जगत से परे मुक्ति। मुक्ति के और एक शब्द है पर, ये पवर्ग। तो मुक्ति के कितने शब्द हम अलग अलग शब्द देख चुके हैं ना, अपुनर्भवम, अपवर्ग इत्यादि। तो अपवर्ग मतलब मुक्ति, क्यों बताएंगे कोई? हाँ सही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्र में बताया है कि ये संसार का वर्णन ऐसे कहा गया है कि ये है पवर्ग। आप सब देवनागरी लिपि सीख चुके हैं, आप जानते हैं क ख ग घ ङ, तो इसको क्या कहते हैं, क वर्ग, है ना। उसी प्रकार से प फ ब भ म, इसको कहते हैं प वर्ग। वर्ग मतलब सारे अक्षर जो हैं, तो प वर्ग। तो प वर्ग में प मतलब परिश्रम, कि दुनिया में सभी को परिश्रम करना है, राजा हो या रंक, हरे को करना है। नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो जंगल का राजा होता है सिंह, वो भी अगर अपना मुंह खोल के बैठे कि मेरे मुंह में भोजन आना चाहिए, आएगा। अगर सोता रहे सुप्तस्य, तो नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः, तो उसके मुख में मृग या पशु प्रवेश नहीं करेगा, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को, राजा हो या रंक, इस दुनिया में परिश्रम करना ही पड़ता है। और कितना परिश्रम करना पड़ता है, फेन आज मुंह में झाग आ जाता है करते करते, जैसे गधा जब परिश्रम करता है, या बैलों को भी आपने देखा होगा, बैल जब ज्यादा परिश्रम करते हैं तो ऐसी अवस्था हो जाती है, इतना परिश्रम होता है। प फ भीर ब, ब से क्या होता है, जब इतना परिश्रम करता है तो बंधन हो जाता है, कर्म बंधन हो जाता है, क्योंकि वो तरह तरह के पुण्य और पाप करता है, और न केवल पुण्य पाप भी व्यक्ति को बद्ध अवस्था में रखता है। क्यों, पुण्य भी बंधन का कारण है, ऐसा नहीं कि केवल पाप बंधन का कारण है। पुनर्जन्म लेना पड़ता है पुण्य के फल को भोगने के लिए, इसलिए पाप हो या पुण्य दोनों ही हमें बांध के रखते हैं इस भौतिक जगत में। तो व्यक्ति ऐसे जब पाप और पुण्य दोनों करते रहता है तो बंधन होता है, प फ ब, और फिर भ मतलब भय, और ये सब करते करते उसको भय हो जाता है, अरे मेरी मृत्यु होगी, अरे मेरा धन चले जाएगा, मेरी इंद्र तृप्ति बंद हो जाएगी, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो भय, हर एक व्यक्ति संसार में भयभीत है। और ये एक नियम है, समझ लीजिए कि जब तक कि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बनता, वो भयभीत ही रहता है। और भय से मुक्त होने के लिए रास्ता क्या है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। मन को उपदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं उपदेश, भजहु रे मन, किनका भजन करो, नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन करो, जिस जो भजन करने से क्या होगा, अभय प्राप्त होगा। तो जो भगवान के भक्त नहीं है सदैव भयभीत अवस्था में रहते हैं। तो भ और अंत में म, म मतलब मृत्यु। तो प फ ब भ म, तो दुनिया का वर्णन क्या है, ये दुनिया क्या है, प फ ब भ म। कोई पूछे कि आपने क्या सीखा दुनिया के बारे में, हमने सीखा प फ ब भ म, ये दुनिया है। तो हमें क्या होना है, ये प फ ब भ म से मुक्त होना है, पवर्ग से मुक्त होकर अपवर्ग की अवस्था में अपने आप को स्थित करना है। तो चाहे भक्त स्वर्ग में हो, अपवर्ग में हो, या नरक में हो, वो तीनों ही अवस्थाओं को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो भजन ही करता है, अपना साधन करता है, सेवा करता है भगवान की। प्रभुपाद जी कहा करते थे, बंगाली में कहावत है, बंगाली की कहावत मैं भूल गया, लेकिन वो कहावत है कि कृषि में जो किसान होता है वो एक यंत्र का प्रयोग करता है धान्य को काटने के लिए, ढेकी, ढेकी बोलते हैं उसको, है ना, छिलका, छिलका निकालने की ढेकी। तो कहावत ऐसे है कि ढेकी को आप स्वर्ग लोक में ले जाएंगे तो वही कार्य करेगा, धान्य का छिलका निकालता रहेगा बस। ऐसा नहीं कि स्वर्ग लोक में गया इसलिए ढेकी को दूसरा काम करेगा, है ना, कि स्वर्ग लोक का ढेकी नहीं, काम तो वही करेगा। ठीक उसी प्रकार से भक्त है, भक्त को आप जहां भी ले जाइए, मद्रास ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, रशिया ले जाइए, स्वर्ग ले जाइए, नरक में ले जाइए, या गोलोक वृंदावन में ले जाइए, वो एक ही काम करेगा, क्या है, भगवान की भक्ति करेगा। क्योंकि ऐसे लोगों का काम ही एक है तो इसलिए वो भयभीत होते ही नहीं है, न कुतश्चन बिभ्यति। तो यह कहने का मतलब है कि वो अपवर्ग भी नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते। तो याद रखिए कि इस अध्याय का शीर्षक है कि मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। तो ये तीसरा, चौथा उदाहरण था। अब पांचवा उदाहरण ये है श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में, जबकि इंद्रदेव जो कि देवराज हैं, वो कह रहे अपनी माता देव, अपनी माता दिति से कहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भगवान की श्री कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को स्थित किया है, वो वास्तव में अपने हित को जानते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है बहुत निपुण होते हैं, प्रथम श्रेणी के निपुण होते हैं, और अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो कैसा करना है वो सिद्धि को जानते हैं प्राप्त करने के लिए। तो ये भी एक बात है कि इंद्रदेव बता रहे हैं समस्त इच्छाओं को त्यागते हैं, अर्थात मुक्ति की इच्छा को भी त्यागते हैं। आगे चल के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं प्रहलाद, जरा पढ़िएगा।
नास्तिक गुरु में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोग के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान गुण कीर्तन में रत रहकर उनके चरण कमलों में अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो तो इनमें से किसी भी की आवश्यकता नहीं रह जाती।
ठीक है। तो प्रहलाद महाराज के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण कीर्तन में अपना समय बिताता है, उसको ऐसे भौतिक कामनाओं के या भौतिक वरों के वरदानों की कोई आवश्यकता नहीं है, न उसे कोई कर्म कांड की आवश्यकता है, न कोई यज्ञ करने के लिए, और न ही उसके मुक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि वो उसने अपने आप को परम अवस्था में स्थित कर लिया है, और इस ऊंचे स्वाद को प्राप्त करने के कारण उसे निम्न श्रेणी के स्वाद में कोई रुचि नहीं है। गीता में भगवान क्या कहते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा, ऊंचा स्वाद है भक्ति का। भक्ति के ऊंचा स्वाद को प्राप्त करने से व्यक्ति निम्न श्रेणी के स्वादों को त्याग देता है, और मुक्ति भी निम्न श्रेणी के स्वाद में आता है, ब्रह्मानंद। तो ये महत्वपूर्ण उपदेश है, प्रहलाद अपने छोटे छोटे मित्रों को बता रहे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, फिर भी प्रहलाद महाराज ऐसे दर्शन के बातें बता रहे हैं। आगे इंद्रदेव नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। जब नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और फिर हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए थे, तो सारे देवी और देवता सामने आए थे। पहले सब लोग आगे चलने के लिए घबरा रहे थे ना? एक दूसरे को कह रहे थे, आप जाना, कोई कह रहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर लक्ष्मी देवी से कहा, लक्ष्मी देवी ने क्या कहा, नहीं मैं नहीं जाऊं, इनसे मैंने शादी नहीं की, इतना क्रोध, इतना हमें भय लगता है, हम नहीं जाएंगे। और फिर कौन रहा बाकी? प्रहलाद। प्रहलाद तुम जाओ आगे जाओ आगे जाओ। प्रहलाद डरे? प्रहलाद तो सीधे आगे चले गए, प्रहलाद को कोई डर नहीं था। और जैसे ही नरसिंह देव भगवान ने प्रहलाद का दर्शन किया, तुरंत उनका गुस्सा खत्म हो गया। शांत उग्र नरसिंह से वो शांत नरसिंह हो गए। और फिर उन्होंने प्रहलाद को वरदान दिए, उनके प्रहलाद के सर पे अपने करकमल रखे और आशीर्वाद दिया। तो फिर सारे देवता फिर आगे आने का साहस किए और आगे आके एक एक अपने अपने प्रार्थनाएं स्तुति वगैरह सुनाने लगे। तो यहां इंद्रदेव प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना उनकी है जरा कोई पढ़ेंगे?
हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्म कांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तु तो यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता है, आप सभी जीवों के परमात्मा है, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी है। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरणा विष्णु के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदय से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदय में हम आपको स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेमा भक्ति में रत हैं, उनके लिए असुर द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए। वस्तुतः यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं।
बस यही सारा सार इंद्रदेव ने कह दिया भगवान के सामने। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके उनकी सारी भौतिक संपत्ति भी भगवान छीन लेते हैं, फिर भी वो विचलित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास और एक महत्वपूर्ण चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मूल्यवान है। एक व्यक्ति हमें बता रहे थे कि एक सज्जन हैं जो जयपुर में रहते हैं और उनका व्यवसाय है, कोई कपड़े का या कुछ व्यवसाय है, और उनकी आदत थी कि वो हर रोज, और है भी, गोविंद देव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है ना गोविंद देव का जयपुर में, तो वहां जाते थे। और जब वो मंगल आरती में गए थे एक बार, तो अचानक उनको खबर पहुंची कि उनके गोदाम में आग लग गई है। तो तुरंत वहां पर गए और जाकर देखा कि आग इतनी हो गई कि सारा माल नष्ट हो गया है। तो उन्होंने अग्निशमक केंद्र को फोन लगाया और फोन लगा के वापस अपने मंदिर में चले गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि क्यों दर्शन को अभी बीच मंगल आरती तो बीच में छूट गई ना, तो अब दर्शन बाकी, तब दर्शन करने के लिए चले गए वापस। तो कोई लोग कहने लगे, अरे आपका सारा गोदाम जल गया, इतने करोड़ों रुपए आपके नष्ट हो गए, आप मंदिर जा रहे हैं अभी? उन्होंने कहा, जब भगवान ने लिया है, उन्होंने तो दिया है और देकर अभी वो ले रहे हैं, अभी इतना इतनी बड़ी अग्नि यहां चल रही है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो पानी की बाल्टी लेकर तो जाके बुझा नहीं सकता, अग्निशमन केंद्र वालों को बुलाया है, वो अपनी गाड़ी लेकर आएंगे, जो करना है वो करेंगे, अब मैं अपने मंगल आरती क्यों मिस करूं, इसके लिए मुझे तो जाना चाहिए, ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी ले रहे हैं। तो आराम से गए, मंगल आरती के दर्शन वगैरह किए, आए, तब तक वो अपना सब पानी वानी लगाकर बुझा रहे थे, जो बचा सो बचा, नहीं बचा सो गया। यह है श्रद्धा, क्योंकि वो समझते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य क्या है, क्षणभंगुर है, आज है तो कल नहीं है, देने वाले भगवान है, लेने वाले भगवान है, बीच में हम भ्रमित होकर कहते ये मेरा है, तो हमारा कभी नहीं है ये धन, केवल हमारा ये एक प्रकार का मोह है धन के प्रति, जिसकी वजह से हम सोचते हैं ये ममत्व हो जाते, ये मेरा है। परंतु वास्तव में इंद्रदेव कहते हैं कि आप ही केवल भोक्ता हैं, एकमात्र भोक्ता हैं, और हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में हमेशा लगे रहें। और प्रभुपाद आगे कहते हैं कि तात्पर्य इंद्रदेव की इस प्रार्थना का ये है कि ब्रह्मा से लेकर तुच्छ जो चींटी है, हर प्राणी का स्थान है कि वो भगवान की सेवा में लगे। किसी का स्थान ये नहीं है कि वो भोक्ता बने। भोक्ता तो केवल भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी प्रसन्न हो जाएंगे। क्या उदाहरण था, पहले चर्चा कर चुके हैं इसके लिए, कौन सा उदाहरण? पेट में भोजन जाने से सारी इंद्रियां जो हैं संतुष्ट हो जाती हैं और उनको पोषण मिल जाता है। फिर आगे श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना है गजेंद्र की, पढ़िए जरा।
हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसलिए जो आपके शुभ गुणों का दान करके ही सदैव तुष्ट रहते हैं, उन्हें न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न मांगने की आवश्यकता होती है।
गजेंद्र ने क्यों पुकारा था भगवान को, उनकी सेवा के लिए, कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं इसलिए आइए, इसलिए पुकारा था? आर्त अवस्था में अपनी जान बचाने के लिए पुकारा था। तो गजेंद्र की पुकार वैसे शुद्ध भक्ति में नहीं आती, क्योंकि वो एक सकाम भक्त माने जाते हैं। आर्त अवस्था में उन्होंने भगवान को पुकारा था, तो अपने आप को समझ रहे वो कि मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैं तो सकाम भक्त हूं, और मैं जब आपके पास आया तो कोई वरदान मांगने के लिए आया, परंतु मैं जानता हूं कि ऐसे अन्य भक्त हैं जो मेरी तरह नहीं हैं, जो बहुत शुद्ध हैं, और वो इतने मग्न हो गए हैं आपके दिव्य गुणों के वर्णन के आनंद में कि उनको दूसरी कोई कामना नहीं है, किसी भी चीज के प्रति वो आसक्त नहीं है, और ऐसी कोई भी प्रार्थना आपके सामने नहीं करना चाहते हैं। तो गजेंद्र हालांकि बहुत नम्र होकर कह रहे हैं ये कि मैं ऐसा भक्त नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो किसी भी भौतिक चीज की प्रार्थना नहीं करते हैं, आपसे याचना नहीं करते हैं, अर्थात मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं। आगे दुर्वासा मुनि को भगवान विष्णु या नारायण स्वयं उपदेश देते हैं श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में, पढ़िएगा।
वैकुंठनाथ दुर्वासा मुनि को किस तरह उत्तर देते हैं? मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे पांच प्रकार की मुख्य इच्छाओं को भी आकांक्षा नहीं करते। ये है, पहला मेरा तादात्म्य सायुज्य, दूसरा मेरे लोगों में वास करना सालोक्य, तीसरा मेरे ऐश्वर्य की प्राप्ति श्रास्ति, चौथा मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति सारूप्य, पांचवा मेरे सानिध्य मेरा सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य। अतएव जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी।
तो ये बहुत ही मधुर एक प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, आप सब पढ़िएगा। जब दुर्वासा मुनि क्षमा याचना करते हैं भगवान से कि मैंने आपके भक्त अम्बरीश महाराज से बहुत बड़ी के प्रति बहुत बड़ी अपराध कर ली है, तो भगवान क्या कहते हैं उनसे? अपराध क्षमा कर देता हूं, ऐसे कह देते हैं? क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीनो न ही अस्वतंत्र द्विजः। और ऐसे सुंदर प्रार्थनाएं हैं कि मैं मेरे भक्तों का के पराधीन हूं, अधीन हूं मैं, और मैं अस्वतंत्र हूं। देखिए भक्ति की खूबी ऐसी है कि भगवान अपने स्वतंत्रता को भी खो बैठते हैं। वो कहते हैं मैं अस्वतंत्र हूं, और भक्तों के हवाले जब मैंने सब कुछ कर लिया है तो अब मैं स्वतंत्र रूप से आपको आपके क्षमा नहीं कर सकता। तो कौन क्षमा कर सकता है? अम्बरीश महाराज, और इस समय भगवान जो है अपने भक्तों का गुणगान करना आरंभ करते हैं। जितने उत्साह से भक्त भगवान का गुणगान करते हैं उतने ही उत्साह से भगवान भक्तों का गुणगान करते हैं, तो दोनों के बीच में एक प्रकार की स्पर्धा होती है कौन एक दूसरे के गुणगान और अधिक करेगा, और भगवान ऐसे गुणगान में बड़ा आनंद लेते हैं। तो जब भगवान आनंद लेते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते। तो हमारे लिए भक्तों का गुणगान और भगवान का गुणगान दोनों ही समान है, दोनों ही करना चाहिए। आगे इसी प्रकार से नाग पत्नियों की प्रार्थना का उदाहरण देते हुए इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो आपके चरण कमलों के रज से आकृष्ट हैं, वो ऐसे सिद्धि की अवस्थाओं से बिल्कुल आसक्त नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं करते। और उसी प्रकार से आगे जो श्रुति मंत्र हैं, जो मूर्तिमान वेद और उपनिषद प्रार्थना करते हैं भगवान के प्रति, वो प्रार्थनाओं में भी ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में पूरी तरह से मग्न है वो तथा कथित मुक्ति से भी परवाह की परवाह नहीं करता है। सच्ची मुक्ति क्या है बता सकते हैं आप? भागवतम में मुक्ति की परिभाषा क्या है? हाँ बताइए। मुक्तिर हितवान था मुक्तिर मुक्तिर हितवान था रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। इसका क्या मतलब है?
जो जो हमारे गलत रूप है, जो जो हमारे वास्तविक रूप नहीं है उसको उसका परित्याग करके और अपने असली स्वरूप में
अर्थात झूठे उपाधियों को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? कृष्णेर स्वरूप हो, जीवेर स्वरूप हो, कृष्णेर नित्य दास। तो ये हमारा असली स्वरूप है। तो जो व्यक्ति सदैव कृष्ण की सेवा में रत रहता है वो मुक्त कहलाता है, मुक्त पुरुष कहलाता है। कोई श्लोक जानते हैं जीवन मुक्त के बारे में? रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? यह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। क्या मतलब है इसका? जो हरि का दास है, यह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, जो अपने कर्मों से, अपने मन से, अपने शरीर से, अपने वाणी से हर अवस्था में हर दृष्टि भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। इस शरीर के भीतर दुनिया के अंदर रहते हुए भी वो मुक्त कहलाता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे लिए। तो इस बात को हमें जानना चाहिए कि वैष्णव समझते हैं कि मुक्ति का अर्थ होता है कृष्ण भगवान की भक्ति में दृढ़ता से स्थिरता से स्थित होना। मुक्ति की परिभाषा है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा रहना, अपने स्वरूप में स्थित होना, यह मुक्त अवस्था। क्योंकि जो व्यक्ति सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगेगा वो तीन गुणों के परे नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये मुक्ति की परिभाषा है भागवत की। चैतन्य महाप्रभु ने ये परिभाषा दी है चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवत का प्रमाण सामने रखते हुए। अच्छा, आगे अगले पेज में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध से, उद्धव गीता से और एक उदाहरण, बल्कि दो उदाहरण हैं, तो पढ़िएगा। तो कौन से हैं चार प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य? सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारष्टि। पांचवा नहीं बताया गया है, क्यों? क्योंकि केवल चार ही भक्तों से संबंधित हैं, पांचवा जो है जो सायुज्य है भक्त लोग चाहते ही नहीं है इसको। तो कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, अगर वो दिए भी जाएं भक्तों को तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। जब ये चार प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को स्वीकार नहीं करते तो इस दुनिया के ऐश्वर्यों के पीछे क्यों जाएंगे भला, ये संभव नहीं है। इसका मतलब है कि भक्त लोग भगवान की सेवा में इतने रत रहते हैं, मग्न रहते हैं कि उन्हें इस दुनिया के भी अन्य कोई वस्तु नहीं चाहिए और न ही उनको कोई मुक्ति चाहिए। और आगे क्या कहते हैं,
जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलाप में पूर्णतः तल्लीन रहती है उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्टसिद्धियां या साक्षात मोक्ष पद प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती।
तो इसी बात को जो वृत्रासुर कहते थे कि न उन्हें ब्रह्म लोक चाहिए न ब्रह्मा जी होना है उनको, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, अगर मुझे ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, अगर वो ब्रह्मा अभक्त है तो इसकी अपेक्षा में क्या चाहता हूं, एक वैष्णव के घर में एक कीट रूप में मैं रहूं। तो वैष्णव को कभी कोई पद नहीं चाहिए, भक्ति में आने के बाद भी कोई पद की कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें देखना है कि केवल हमारा सिद्धांत, हमारा उद्देश्य केवल एक ही रहे, वैष्णव संघ और कृष्ण भक्ति। और फिर और एक उदाहरण, शिवजी पार्वती से कहती हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में। मार्कंडेय ऋषि, इनका वर्णन श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में आता है, 12वें स्कंध में। ऐसे बताया जाता है कि मार्कंडेय ऋषि की आयु बहुत बहुत लंबी है। ब्रह्मा जी का एक दिवस, फिर ब्रह्मा जी की एक रात, और फिर ब्रह्मा जी के दूसरे दिवस में भी अभी तक जीवित हैं। मतलब कितने मनवंतर हो गए, एक रात और एक दिन, कितने मनवंतर हुए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के एक दिवस में कितने मनवंतर, 14 मनवंतर। तो 14 मनवंतर दिन के, अब उतना ही समय रात का जब प्रलय काल होता है, और फिर उसके बाद और तो 28 से अधिक मनवंतर। तो सोच लीजिए कि कितना लंबा समय। मनवंतर क्या होता है, एक मनु के जीवन की अवधि। तो कितना लंबा होता है ये, कितने चतुर्युग होते हैं, 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग मतलब क्या, चार युग। कौन से युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इसको चतुर्युग कहते हैं, ठीक है ना। जब ये हजार बार दोहराया जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है, और रात भी इतनी ही लंबी होती है भगवान की, ब्रह्मा जी की। तो मार्कंडेय ऋषि की जीवन की अवधि सोचिए इतनी लंबी है, और फिर भी वो भगवान की भक्ति भूले नहीं। भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान का विशेष वरदान हुआ उनके ऊपर, उनको माया का दर्शन हुआ कि भगवान की माया शक्ति कैसी है। और शिवजी ने और पार्वती देवी ने उनको अपना दर्शन दिया। शिव जी प्रशंसा कर रहे थे मार्कंडे ऋषि की। क्या कह रहे थे मार्कंडे ऋषि के बारे में, कोई पढ़िएगा। यहां तक कि भौतिक जगत से मुक्ति भी नहीं चाहता है। अच्छा, अब आगे रूप गोस्वामी पद्म पुराण के उदाहरण देते हैं। पद्म पुराण में जो दामोदर अष्टक है, दामोदर अष्टकम के दो श्लोक लेते हैं और बताते हैं कि कैसे सत्यव्रत मुनि, जो कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वो केवल भगवान के चरण कमलों का स्वाद चाहते हैं, वो बिल्कुल मुक्ति भी नहीं चाहते। तो दामोदर शब्द का अर्थ क्या हुआ बताइए? भगवान को दामोदर क्यों कहा जाता है? दाम रसी है और उदर मतलब पेट, तो जिनका पेट रस्सी से बांधा गया उनका नाम है दामोदर। तो कार्तिक महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है और इस महीने में वैष्णव विशेष करके दामोदर रूप का स्मरण करते हैं और दामोदर अष्टकम हम लोग रोज गाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को हम दीप आदि अर्पण करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। तो सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो हैं वो वरदान देने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। दक्षिण भारत में एक बहुत प्रसिद्ध भगवान का मंदिर है जिसमें भगवान का नाम क्या है? वरदराज। वरदान देने वालों में से राजा। वरदान किसी से मांगने ही है तो भगवान से क्यों नहीं मांगे? लेकिन सत्यव्रत मुनि ने किस तरह का वरदान मांगा, कोई अनुवाद पढ़िएगा। आधे नीचे जाइए।
मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की आशा नहीं करता। मुझे तो आपकी इतनी कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है।
वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम विनेहम वरेशाद अपीह। इदम तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्ताम कि मन्ये ही। वो क्या कहते हैं? वरम देव, आप वरम देव हैं, वरदान देने वाले हैं आप। मोक्षम न, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष वधिम वा, और अन्य भक्ति से उत्पन्न होने वाले मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। न च अन्यम वृणे अहम वरेषद अपिया, और किसी भी प्रकार का अन्य वरदान नहीं चाहिए इस भौतिक जगत के भीतर। मैं क्या चाहता हूं? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, आपका ये जो बाल गोपाल का सुंदर वपुह सुंदर जो शरीर है, दिव्य रूप है, इसका मैं सदैव दर्शन करना चाहता हूं। सदा में मनसी आविरास्ताम, कि मेरे हृदय में आपका यह सुंदर बाल गोपाल का रूप सदैव उदित रहे, सदा प्रकट रहे। किम अन्यई, और अन्य कोई भी कामना की क्या आवश्यकता है, नहीं चाहता हूं मैं। और आगे वो और एक प्रार्थना करते हैं, पढ़िए दूसरा।
कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजं कृतौ च।
तो वो कहते हैं कुबेर आत्मज, आत्मज मतलब पुत्र, आत्मज अपने आप से जन्म लेने वाले। तो कुबेर के दो पुत्रों का नाम क्या था? नलकुवर और मणिग्रीव। तो उन्होंने क्या किया था? क्या श्राप दिया उनको? अब वृक्ष बनेंगे। वैसे अलग अलग कर्मों के आधार पर व्यक्ति को अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं ना, अलग अलग योनियों में। तो जो जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा मांसाहार कर रहा है तो फिर उसे मनुष्य योनि क्यों? उसको एक शेर का शरीर मिलना चाहिए, कोई पशु का शरीर मिलना चाहिए। अगर कोई बहुत सोना पसंद करता है कि दिन में 14 घंटे 12 घंटे 15 घंटे सो जाए, तो मनुष्य शरीर थोड़ी इसके लिए उपयुक्त है। एक बार हमने देखा था जब हम ट्रेन में जा रहे थे, लंबी यात्रा थी, करीब करीब 20-24 घंटे की यात्रा हुई होगी, और एक आदमी था, जब से हम अंदर आए वो सो गया। जैसे ही आया अंदर, मेरे सामने आया और वो सो गया, और जब हम निकले 24 घंटे उस समय उठा वो, और बीच में ना उठा खाने के लिए ना पीने के लिए ना कुछ। बीच में हम थोड़े घबरा गए, क्या है ये आदमी है ना ठीक, लेकिन बीच में हिलने के वो ऐसे वैसे हिल रहा, करवट बदल रहा था, तो हमें समझ में आया कि है तो जिंदा, कुछ हुआ नहीं है इसको। लेकिन सोया तो ऐसे सोया कि बस उठा ही नहीं वहां से। तो ऐसे हम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे लोग सो सकते हैं। ये शायद 20 घंटे तो कम से कम हुए होंगे, 20 से तो कम नहीं सोया वो लगातार। तो ऐसे आदमी को सोना है तो मनुष्य शरीर क्यों? बहुत तकलीफ होती है मनुष्य शरीर में ऐसे सोना। तो भालू का शरीर अच्छा है, भालू जो होता है वो महीनों तक सो सकता है लगातार, है ना। तो भालू सोना है तो भालू का शरीर ले लो और खूब सो जा। तो उसी प्रकार से जो नग्न अवस्था में होना चाहते हैं, जैसे अभी सिनेमा वाले वो सब करते हैं, तो मनुष्य शरीर तो इसके लिए नहीं है। तो इसके लिए कौन सा शरीर? वृक्ष का शरीर। तो एक बार हम रशिया में गए थे तो हम इसी बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि कर्मों के कैसे अलग अलग फल होते हैं। और फिर कह रहे थे कि ऐसे करने, नग्न अवस्था में होने से वृक्ष बनते हैं। इसे हमने कहा कि इसलिए मॉस्को में इतने सारे वृक्ष हैं। तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे सब मंदिर में, क्योंकि वो तो जानते हैं। और हम जब जाते थे वहां रशिया वगैरह में, तो हम दिसंबर महीने में जाना पसंद करते हैं। क्यों? बहुत ठंडी है, बर्फ है वहां, खूब कपड़े पहनते हैं, है ना। अभी प्रकृति से जोर होकर उनको पहनना ही पड़ता है। वो तो ये सज्जन के लिए जाने का समय है, इसलिए वहां इतने सारे वृक्ष हैं। अभी आने वाले, अभी संस्कृति हमारी जो बन रही है, देखिए वृक्षों की संख्या बढ़ रही है। एक ओर से हम काटे जा रहे हैं वृक्षों को, दूसरी ओर से जन्म भी इनका वृक्षों का होने वाला है। वही अवस्था थी जो नलकुवर मणिग्रीव की थी। तो उन्होंने उन्मत्त अवस्था में देखा नहीं कि नारद जी जैसे महान भक्त आ रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। तो नारद मुनि को गुस्सा नहीं आया। ऐसे महान भक्त जो होते हैं जैसे नारद मुनि, वो अहंकार से प्रेरित होकर कोई श्राप नहीं देते हैं। वो उनका श्राप जो होता है वो तो आशीर्वाद होता है, क्योंकि नारद मुनि जैसे भक्तों के हृदय में कभी द्वेष नहीं रहता। वो सबके हितैषी होते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं। इसलिए उन्होंने देखा कि ये दो भाई इतने पतित हो गए हैं कि अभी इनकी भलाई कैसे की जाए। उपदेश करने से तो कुछ होगा नहीं इनका, बल्कि उपदेश ऐसे लोगों को करेंगे तो वो केवल क्रोधित हो जाते हैं। चाणक्य पंडित ने कहा है कि जिस प्रकार से एक जहरीले सांप को आप अगर दूध पिलाएंगे तो उसका जहर बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति को उपदेश करने से वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को उपदेश करने में कोई फायदा नहीं है। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनको उपदेश देना तो बेकार की बात है, तो चलो ऐसी कृपा मुझे इनके ऊपर करनी चाहिए जिससे कि उनको भगवान की कृपा मिल जाए। तो उन्होंने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो उनको बुरा लगा, क्षमा याचना करने लगे। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, ये वरदान आपको मिलेगा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण आके आपका उद्धार करेंगे। बद्धम मूर्त्य यद्वत। और आगे वो कहते हैं त्वया मोचितौ भक्ति भाजम कृतौ च। और जब भगवान श्री कृष्ण उनको मोचितौ, उनको मुक्त कर दिया, जब वो अर्जुन वृक्ष के रूप में थे, यमल अर्जुन वृक्ष में, तो उनको आपने महान भक्त बना दिया। भक्ति भाजम कृतौ च। तो ऐसे सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि ये आपकी कृपा है कि मणिग्रीव और नलकुवर ऐसे जो इंद्र तृप्ति में रत लोग थे, उनको आपने आपके भक्ति में स्थित कर दिया। तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ, कि मेरी कामना तो आपके प्रति ऐसी है कि मुझे केवल प्रेमा भक्ति चाहिए आपकी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। न मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरे, मुझे मोक्ष की कामना भी नहीं है, मोक्ष पे ग्रहण नहीं करना चाहता हूं मैं। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा हर तरह के व्यक्तियों के ऊपर रहती है, और विशेष करके भगवान के भक्त है। क्योंकि नारद मुनि ने कृपा कर दी थी नलकुवर और मणिग्रीव के ऊपर, तो महान भक्तों की कृपा जहां जाती है, भगवान की कृपा भी पीछे पीछे चलती है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान अपनी कृपा उन लोगों के ऊपर देने के लिए बाध्य हो जाते हैं जिनके ऊपर उनके भक्तों ने कृपा की है। ये बात याद रखेंगे आप? बताइए, क्या कहा हमने अभी?
भगवान अपनी कृपा उन लोगों पर देने के लिए बाध्य हो जाते हैं
जिन पर उनके भक्तों ने कृपा की है। तो भक्तों की कृपा वास्तव में भगवान की कृपा से बढ़कर है, क्योंकि जहां भक्तों की कृपा होती है वहां पर भगवान की कृपा आएगी ही। क्यों? क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के वश में है ना। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज। भगवान अस्वतंत्र है, तो जहां भक्त कहेंगे मुझे हे भगवान मुझे यहां कृपा करनी है, आप यहां कृपा कीजिए, तो भगवान कर देते हैं। तो नलकूपर मणिग्रीव का सौभाग्य था कि नारद मुनि का दर्शन उनका हो गया। तो सत्यव्रत मुनि जो है ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल आपके सुंदर रूप का सदैव दर्शन करना चाहता हूं और आपकी प्रेमा भक्ति चाहता हूं। हाँ, वो भी भक्त हैं, महान भक्त थे। उनका प्रसंग वैसे ज्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये सत्यव्रत अलग है। भाग जिनका वर्णन भागवत में आता है सत्यव्रत का, वो राजा सत्यव्रत अलग हैं। वो कौन थे बताइए? जिन सत्यव्रत राजा का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, मत्स्य अवतार। क्या हुआ मत्स्य अवतार के लिए? सत्यव्रत राजा का नाम वहां कैसे आया? जब सत्यव्रत राजा एक जगह तालाब में पानी पीने गए, अपने मुट्ठी में उन्होंने पानी उठाया और हाथ में क्या देखा? मछली। फिर से रख दिया, मछली ने क्या कहा? मछली बड़ी हो गई और कहा कि ये मेरे लिए छोटा जगह है, मुझे बड़े तालाब में रखिए। तो बड़े तालाब में रख दिया, वहां क्या हुआ? वो भी और बड़ी हो गई, वो भी छोटा पड़ गया। ऐसे करते 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 वो समुद्र में आकर पहुंच गए। और फिर सत्यव्रत से आदेश किया कि कई दिनों में प्रलय होने वाला है, तो आप सारे जितने भी प्राणी हैं योनियों के, अलग अलग योनियों को सब लाइए और एक नौका तैयार कीजिए और मैं आपको प्रलय जल में घुमाऊंगा। मत्स्य अवतार भगवान है ना, तो इसलिए फिर ये मत्स्य अवतार भगवान का हो गया सत्यव्रत राजा। आगे चल के सत्यव्रत राजा अपने अगले जीवन में क्या बने, आप भागवत नहीं पढ़ते बताइए कौन हुए? मनु, सही बताया। कौन से मनु हुए? अब जो मनु है वो कौन से हैं? स्वयंभू मनु, वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु अर्थात कौन? विवस्वान के पुत्र, इसलिए उनको नाम हुआ वैवस्वत। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत। स्वयंभू कौन से नंबर के थे, कौन से नंबर के मनु थे? पहले मनु थे। और स्वयंभू कौन से हैं? और वैवस्वत सातवें। छठे मनु कौन थे? चाक्षुष मनु। तो सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत राजा आगे चल के चाक्षुष मनु बने। ठीक है, तो वो उस सत्यव्रत के बारे में तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जिन्होंने दामोदर अष्टकम लिखा है उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा कुछ वर्णन नहीं पढ़ने में आता है। लेकिन हुए हैं कोई महान भक्त, नहीं तो ऐसे कविता कैसे लिख सकते हैं। केवल शुद्ध भक्ति है इसमें, और कुछ नहीं है, बिल्कुल हमारे सिद्धांत से मिलता जुलता है। और आगे फिर और एक प्रमाण देते हैं रूप गोस्वामी, है शीर्ष पंचरात्र से, ये भी और एक शास्त्र है। इसमें भक्त प्रार्थना करते हैं कि मैं केवल आपके चरण कमलों में एक नित्य दास होना चाहता हूं, मुझे यही एक वरदान दीजिए। तो ये एक वरदान है जो योग्य है भगवान को पूछने के लिए। जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, शॉपिंग लिस्ट लेकर भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। और आगे भी प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है, कोई पढ़िएगा।
नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया। विष्णुदेव भगवान की सेवा में लगे रहे, हनुमान का यह चरित्र आदर्श है जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय है।
तो प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में भी कहा है ना, नरसिंह देव भगवान से जब भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, तो प्रहलाद ने क्या कहा कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, आपके साथ कोई व्यवसाय करने में नहीं आया कि मैं आपकी पूजा करूं, आपका भजन करूं और मेरे सेवा के बदले में आपको कुछ मुझे देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं चाहिए, केवल आपके भक्तों का संग मुझे चाहिए, आपकी सेवा का अवसर चाहिए। तो उसी प्रकार से यहां भी शीर्ष पंचरात्र में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं अगर वरदान मांगू तो केवल एक ही, कि आपका नित्य दास बनकर मैं रहूं। और इस संदर्भ में वो हनुमान का उदाहरण देते हैं जो भगवान का नित्य दास बन के रहना चाहते हैं।
समझ में नहीं आया, हनुमान जी तो पश्चात बाद में प्रहलाद महाराज
पहले। अच्छा, आप जवाब दीजिए, प्रश्न है कि हनुमान जी तो बाद में आए त्रेता युग में, प्रहलाद महाराज तो सत्ययुग में थे, तो फिर हनुमान को उदाहरण कैसे दिया उन्होंने, बताइए कोई। गुजरते रहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि डाकिया आज आया 4 बजे और कल आप आए सुबह 10 बजे, रोज डाकिया 4 बजे आता है और आप दफ्तर में जाते हैं 4 बजे। अब अगर आप कहें कि डाकिया तो मेरे आने के बाद आता है आपको ऑफिस में, शुरुआत में ही पहले से कैसे आपको डाक मिल गया 10 बजे सुबह? आप 3 बजे निकल गए थे दफ्तर से कल, 10 से 3 हम दफ्तर में थे, 4 बजे डाकिया आया, डाकिया ने डाक डाल दिया, तो आप कहेंगे अरे अभी तो 10 बजे हैं, डाकिया तो 4 बजे आएगा, तो आपको डाक कैसे मिल गया? क्या बताएंगे आप? कल लेके गया था ना। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के हर एक दिवस में भगवान के अवतार होते हैं। कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार आते हैं, श्री रामचंद्र भगवान ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार आते हैं। ये नित्य नियम है, ऐसे उनका साइकिल है, चलते रहता है, ये चक्र है ये। लीलाएं तो मुख्य तरफ वैसे ही होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो भगवान करते रहते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हालांकि इस दिवस में, इस चतुर्युग में, वैसे तो चतुर्युग कितने होते हैं, ब्रह्मा जी के दिवस में 1000 चतुर्युग होते हैं, और यह तो एक चतुर्युग की बात है। तो पिछले वाले चतुर्युग में तो आए थे ना, हर चतुर्युग में आते हैं रामचंद्र भगवान, और जब रामचंद्र भगवान आते हैं तो हनुमान जी तो होने ही हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये इस तरह का प्रश्न कई लोग करते हैं, इसलिए आपको ये जान लेना चाहिए ताकि आप भी उत्तर अच्छी तरह से दे सके। नहीं, वो तो काल के इसमें नहीं लिखा गया है, वो तो यूं ही ऐसे लिखा गया है। व्यासदेव कई हुए हैं, और जिन जिन व्यासदेव ने अभी 5000 वर्ष पूर्व जो किए हैं वेदों का संपादन, वो है कृष्ण द्वैपायन व्यास। ये 28वें वेद व्यास है। क्यों 28वें हैं बताइए? 28वां युग, चतुर्युग चल रहा है। 7वें मनवंतर, ब्रह्मा जी के हर एक दिवस में 14 मनु होते हैं, और इस समय 7वें मनु का राज्य चल रहा है, और इस 7वें मनु के हर एक मनवंतर के भीतर 71 चतुर्युग रहते हैं। तो 7वें मनवंतर के भीतर ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो हर एक चतुर्युग में द्वापर के अंत में एक व्यास देव होते हैं। व्यास मतलब जो संपादक हैं, एडिटर कंपाइलर, अश्वत्थामा बनेंगे। कभी कभी होते हैं, जैसे ये वाले हैं इस समय जो व्यास हैं, वो विष्णु तत्व माने जाते हैं, साधारण अवतार माने जाते हैं। जो साधारण तो जो व्यास होते हैं वो जीव भी होते हैं, कभी कभी भगवान के अवतार भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्यास देव हैं, ऐसे भागवत में कहा गया है, प्रभुपाद जी टीका करते हैं एक बार कि ये 28वें व्यास देव हैं। हाँ, उसमें अभी ये होंगे या अगला होंगे ये वर्णन होगा, शास्त्र पुराणों में देखना होगा। परंतु व्यासदेव अश्वत्थामा भी आगे चल के बनेंगे, अगले मनमंत्र में, अगले मनमंत्र के लिए तो बहुत समय है। अगले मनमंत्र के में तो और कितने चतुर्युग बाकी हैं, बहुत चेंज हो सकते हैं व्यासदेव। हर 28वें युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ये भगवान का कार्यक्रम है, शेड्यूल है। भगवान साधारण तो उस समय पर आते हैं। विशेष है, बस हम बहुत भाग्यशाली हैं।
महाप्रभु जी चेतन महाप्रभु भी उसी भगवान श्री कृष्ण के उस अवतार में,
एक दिन में एक बार, ऐसे अवतार भी हैं जो दो बार भी आ सकते हैं, जैसे वराह देव दो बार आए, मत्स्य देव दो बार आए, पर साधारण तो जो श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु, वो एक बार आते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के। जिस द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं उसके बाद वाले कली में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ये सब चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ पाएंगे। त्रेता में आते हैं, एक बार आते हैं, हाँ बिल्कुल। रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में इसके बारे में बहुत सुंदर लंबी व्याख्या करते हैं, श्री रामचंद्र के अवतार के बारे में। रूप गोस्वामी ने ही लिखा है ये ग्रंथ, इसका नाम है लघु भागवतामृत। सनातन गोस्वामी ने लिखा है बृहद भागवतामृत, और रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे प्रहलाद महाराज भी हनुमान जी की बात को सामने रखते हैं। अच्छा, फिर आगे पढ़िए, क्योंकि दास्य रस की जब बात होती है तो दास्य रस का उदाहरण किसका दिया जाता है? हनुमान जी का। अच्छा, आगे पढ़िए।
हनुमान द्वारा उच्चारित, हनुमान द्वारा उच्चारित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसमें वे कहते हैं, हे प्रभु, आप चाहे तो इस जगत से मुझे मोक्ष दे या अपने में सदाकार होने का अधिकार दे, किंतु मुझे इनकी इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो।
बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही हनुमान जी ने कि मैं मुक्ति नहीं चाहता, हालांकि आप देना भी चाहते हैं, आप देना भी चाहें तो मैं नहीं चाहता लेने के लिए। क्यों? हनुमान का विचार, हनुमान जी का विचार क्या है कि वो क्यों इस मोक्ष को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं?
दास की तो कोई इच्छा ही नहीं,
सेवा में कमी आ जाएगी। अगर मैं आपके निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया तो आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा? भक्त को चाहिए भगवान की सेवा, निराकार लीन हो जाएगा तो फिर सेवा रहेगा ही नहीं, वो जो संबंध है दास और प्रभु के बीच में वो रहेगा ही नहीं। क्योंकि जो लीन होना चाहते हैं वो सोचते हैं कि हम भी ब्रह्म हैं, भगवान भी ब्रह्म हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान हो गए, तो दास और प्रभु की भावना रही नहीं। लेकिन हनुमान इस दास और प्रभु की भावना को, अंतर को सदैव बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है। वो कहते मैं तो दास हूं आपका, अहम दास है, और लीन होने से ये दासत्व जो है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता ऐसे मोक्ष। और एक जगह रामायण में भी कथा आती है कि जब इंद्रजीत मेघनाद हनुमान जी को गिरफ्तार करते हैं, जब हनुमान उत्पात कर देते हैं ना, सारे लंका को जला डालते हैं, और जलाने के बाद बहुत सारे सेनापति वगैरह आते हैं हनुमान को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाते, बल्कि वही सब मर जाते हैं। और फिर इंद्रजीत आते हैं, वो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, और वो अस्त्र छोड़कर जो ब्रह्मा जी ने दिया हुआ, वो ब्रह्मास्त्र नहीं जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था, ये दूसरा है, पाश के रूप में है ये, और इंद्रजीत उसको छोड़कर हनुमान जी को पकड़ लेते हैं। अगर हनुमान चाहते तो आसानी से छूट जाते, लेकिन उनको ब्रह्मा जी का सम्मान करना था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अस्त्र दिया हुआ था ना इंद्र को, हमारे क्या नाम, मेघनाथ को, इंद्रजीत को, तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का अपमान नहीं करना चाहा, तो अपने आप आ गए, वो अपनी इच्छा से आए, इंद्रजीत के बल से नहीं आए वो। और जब आए सामने तो रावण को बड़ा गुस्सा हुआ था, रावण ने सुना था, रनिंग कमेंट्री सुनी थी कि हनुमान क्या करे, अभी यहां गया वहां जला रहे हैं, इनको मारा उनको मारा, अब ये कर दिया वो कर दिया, तो हनुमान तो रावण तो आग बबूले हो गए थे क्रोध के मारे, और जब हनुमान आके आए सामने तो क्या पूछा, क्या पूछा, कौन हो तुम? स्वाभाविक है ना कि ये आदमी कौन है, ये बंदर है, ऐसे आए या ऐसे सब किया है। तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, दासोहम कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। उन्होंने अपना परिचय कैसे दिया, दासोहम, दास अहम, मैं दास हूं। किनका दास हूं, कोसलेन्द्रस्य, कोसल राज्य के राजा इंद्र का मैं दास हूं। तो कोसल इंद्र, इनका नाम क्या है, राम, रामस्य, तो मैं राम का दास हूं। और राम का वर्णन उन्होंने किया कैसे है, अक्लिष्ट कर्मणः, जो अपने कार्यों में कभी थकते नहीं हैं, ऐसे श्री राम का मैं दास हूं। तो ये हनुमान जी का परिचय, जहां भी जाते हैं वो केवल यही कहते हैं कि मेरा परिचय एक ही है और मैं राम का दास हूं। तो ये भगवत भावना, ये दासत्व की भावना मोक्ष में नष्ट हो जाती है। वास्तव में जो मोक्षाकांक्षी हैं, वो लोग भी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, तो बाहरी रूप से ऐसे लगता है कि ये लोग भी तो भक्ति ही कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, क्योंकि बाहर दुनिया में ऐसे कई लोग आप पाएंगे जो बाहरी रूप से देखा जाए तो बिल्कुल भक्त की तरह लगते हैं, परंतु दो प्रश्न ऐसे लोगों से करने चाहिए जिससे कि आपको स्पष्ट पता चलेगा कि ये वैष्णव है या मायावादी है। एक है, परम सत्य का वर्णन कीजिए, परम सत्य क्या है या कौन है, इससे आपको पता चलेगा कि यह वैष्णव है या मायावादी है। दूसरा प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट उत्तर चाहिए। अगर वो कहेंगे मुक्ति है, ये संसार से मुक्त होना है, तो तीसरा प्रश्न करिए कि मुक्ति के बाद क्या, पहला प्रश्न क्या है, परम सत्य क्या है, या भगवान कौन है क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, जीवन का अंतिम उद्देश्य, सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, और तीसरा, अगर आवश्यकता पड़े तो मुक्ति के बाद क्या है। तो आपके उत्तर क्या है इन तीन प्रश्नों के, बताइए, परम सत्य कौन है, क्या है, श्री कृष्ण, दूसरा, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना, शुद्ध प्रेम प्राप्त करना, और मुक्ति के बाद क्या होता है, भक्ति, सतत कृष्ण की सेवा। मुक्ति के बाद भी भक्ति जारी रहती है, ऐसा नहीं कि मुक्ति के बाद हम भगवान में लीन हो जाएंगे। रूप गोस्वामी भक्ति की तुलना एक आम से करते हैं। एक जगह, आम जब कच्चा होता है तो उसका स्वाद कैसे होता है, खट्टा, और जब पक जाता है तो स्वाद कैसे होता है, मीठा। लेकिन आम है तो वही ना, चाहे कच्चे अवस्था में या पक्की अवस्था में। उसी प्रकार से जब हम नौसुखिया भक्त होते हैं, नए नए भक्ति करते हैं, तो उस समय हमारे लिए भक्ति का स्वाद कैसे होता है, कच्चे आम की तरह, है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे, है ना, तो थोड़ा खट्टा होता है, इतना रस नहीं आता है भक्ति में। भक्ति में नींद आती है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी सुनते सुनते भी नींद आ जाती है ना। लेकिन जब शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है तो भक्ति बहुत मीठा लगता है, बहुत ही मीठा। तो है वही भक्ति जो नौसुखिया अवस्था में करने वाली भक्ति और जो सिद्ध अवस्था में करने वाली भक्ति, सिद्ध भक्ति साध्य भक्ति, दोनों ही एक ही भक्ति है। अंतर क्या है, एक कच्चा है एक पका है बस। और क्योंकि एक कच्चा है दूसरा पका हुआ है इसलिए स्वाद में बहुत अंतर है। तो उसी प्रकार से मुक्ति की अवस्था में वास्तव में आम पक जाता है। कल हमने एक श्लोक बताया था आपको, कौन सा श्लोक था, भगवद गीता का 18वें अध्याय से, कि मुक्ति के बाद वास्तव में भक्ति शुरू होती है, वास्तव में पका हुआ आम होता है मुक्ति के बाद। आगे पर तो बोलिए। समय हो शुभूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परा भक्ति की प्राप्ति होती है कब, ब्रह्मभूत की अवस्था में। ब्रह्मभूत मतलब मुक्ति की अवस्था में, जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझ चुका है और भौतिक उपाधियों से मुक्त हो चुका है, तो उसके बाद फिर अपने आम भक्ति रूपी आम को खाने लगता है, बहुत चखता, बहुत अच्छा स्वाद लगता है। तब तक वो कच्चा आम होता है, स्वाद भी मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना मीठा नहीं होता। इसलिए मुक्ति के बाद वास्तविक भक्ति आरंभ होता है। हम लोग तो अभी भक्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोग असल में वैष्णव नहीं है, केवल वैष्णव होने की तैयारी में है। एक दृष्टि से हम ऐसे तो नहीं कहना चाहिए कि नहीं है, परंतु सिद्ध वैष्णव कौन है। हम तो जैसे बताते हैं कि डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है विद्यार्थी, वो डॉक्टर है भी और नहीं भी ना, वो डॉक्टर होने की तैयारी में है, सही लाइन में है वो, अभी आगे थोड़े वर्ष बस परिश्रम करेगा, परीक्षा पास कर लेगा तो वो भी डॉक्टर हो जाएगा। और मेडिकल कॉलेज से जब बाहर निकलेगा तो डॉक्टरी की का कार्य उसका वास्तव में शुरू होगा, सच्चा काम तो तब शुरू होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा तो असली काम जो है तब शुरू होगा जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। कार्य तो वही कर रहे हैं, हम कोई अलग कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में भी वो डॉक्टरी का काम ही करते हैं, मेडिकल कॉलेज से पास करके भी डॉक्टरी का काम ही करेंगे, परंतु पास करने के बाद वो परिपक्व अवस्था में करते हैं, उसके पहले थोड़ी बात कच्चे अवस्था में करते हैं। उसी प्रकार से हमारे सबके लिए भक्ति में भी ऐसा ही है। शुद्ध भक्त बनने तक हमारी भक्ति कच्ची होती है, शुद्ध भक्त बनने के बाद मुक्त अवस्था में हमारी भक्ति खिल उठती है, और तब वास्तव में हमारा असली काम शुरू होता है। तो उस स्तर की तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। अभी तो हमने दीक्षा ली है तो विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लिया हमने, अब हम क्लास कट करते रहेंगे या लेक्चर में नहीं जाएंगे, हमारा गृह पाठ नहीं करेंगे, परीक्षा में नहीं बैठेंगे, तो और कॉलेज से पास होना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में माला ठीक से नहीं करेंगे, सेवा ठीक से नहीं करेंगे, तो कैसे भक्ति में प्रगति करेंगे। उतना ज्यादा समय लगेगा, उतने जन्म लग जाएंगे, लेकिन बहुत ही गंभीरता से अगर हमने पथ को स्वीकार किया तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो मुक्ति के बाद क्या, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। ये एक प्रश्न ही काफी है, अगर कोई सन्यासी साधु कोई प्रवचन दे रहे हैं, अगर आपको पूछना भी है, आवश्यकता नहीं है वैसे इस्कॉन के बाहर जाने की, परंतु अगर आपको पूछना ही है किसी एक प्रश्न पूछ लीजिए, मुक्ति के बाद क्या होता है। अगर वो कहेगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है या हम लीन हो जाते हैं भगवान में, तो फिर आप जानते हैं कि ये वैष्णव नहीं, इनसे दूर ही रहिए, सम्मान कीजिए परंतु दूर रहिए। अगर वो कहेंगे कि मुक्ति के बाद हमारा वास्तविक कार्य शुरू होता है, हमारे शुद्ध भक्ति की अवस्था में हम भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्षदों की सेवा करते हैं, तो फिर आप जानेंगे कि ये वैष्णव है। एक बार मुझे याद है, कई साल पहले की बात है, उस समय मैं नया भक्त था और मैंने सोचा कि ये मायावादियों को, प्रभुपाद की किताब पढ़े थे तो मायावादी खंडन तो बहुत किया था प्रभुपाद जी ने, तो उसमें हमारी उम्र भी काफी कम थी, तो हमने सोचा चलो जाके मायावादियों को अभी खत्म कर देते हैं, चलो तो हम अकेले जाते थे, उससे उत्साहमयी भक्ति थी। तो चलो किताब ले गए, हम पुस्तक वितरण करेंगे, ये हमने सुना कि एक सन्यासी है, नाम नहीं लेंगे उनका, उस समय की बात है, और वो ये कलकत्ता शहर में हुई थी, उनको बड़ा बहुत सारे विज्ञापन बैनर वैनर सब लगे थे, और उनके प्रवचन का शीर्षक था यू आर द होल, आप ही पूर्ण हैं। तो वो शीर्षक देख के मुझे गुस्सा आया था, सोचा अब तो जाना ही पड़ेगा यहां पर। लेकिन हमने ये भी सुना था कि मायावादी भाषी सुन ले हर सर्वनाश, तो हम दुविधा में पड़ गए, अभी जाएंगे सुनना मना है लेकिन पुस्तक भी वितरण करना है, इतने मासूम लोग हैं सब वहां जाते हैं और ये सब उनको मायावादी दर्शन सुनाएंगे, सब गलत रास्ते में जाएंगे। फिर भी ढेर सारी किताब लेकर मैं पहुंच गया उधर, और पहुंच गया तो सोचा पहले अंदर तो जाना होगा, सब लोग अंदर बैठे हैं, और अंदर गया बैठा, और ये सन्यासी ऐसे बोल रहे थे कि आश्चर्यचकित हो गए। फिर बस हम 15 मिनट के बाद बाहर निकल आए, वे बोल रहे थे कि ये लोग होते हैं ऐसे, अंग्रेजी में प्रवचन चल रहा था, वो बोल रहे थे कि ऐसे ये वैष्णव लोग बोलते हैं कि हम वैकुंठ में जाएंगे। अरे हम कहते हैं वैकुंठ में जाकर करोगे क्या, वो कहते हैं हम भगवान की सेवा करेंगे। अरे भगवान तुम्हारे सामने बैठेगा, तुम भगवान के सामने बैठोगे और आमने सामने एक दूसरे का चेहरा देखोगे, फिर एक दूसरे से कहोगे चले जाओ यहां से, एक दूसरे का चेहरा कब तक देखते रहोगे। तो ये जब हमने सुना, ये सब ऐसे बात कर रहे हैं, सन्यासी हैं, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनके आगे पीछे बहुत सारे लखपति करोड़पति लगे हुए थे, तो हमसे सहन नहीं हुआ, तो हम उठ के चले गए और फिर हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमने शुरू किया वहां पे। तो फिर हम सोच रहे थे कि हाँ क्यों प्रभुपाद जी ऐसा निंदा करते हैं ना, इनका खंडन करते हैं, फिर हम जान गए इतना द्वेष करते हैं, इतनी ईर्ष्या करते हैं भगवान से और वैष्णवों से, कि वो कहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मुक्ति के बाद होना क्या है, कि ऐसा धाम है वैकुंठ जगत और वहां पे अनेक वैकुंठ लोक हैं, और वैकुंठ लोकों में क्या चल रहा है, वहां पे भगवान के विभिन्न चतुर्भुज रूप हैं, गोलोक वृंदावन में तो द्विभुज रूप है श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर रूप, और वहां पर श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ लीला करते हैं, सदैव 24 घंटे लीला चालू है वहां, और भक्त ऐसे भगवान की सेवा में उनकी लीला में मग्न रहते हैं, जैसे गोलोक वृंदावन में ग्वाल बाल है श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण के साथ जो है खेलते रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं वन में जाके, या गोपियां श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं, और जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो दूध मंथन वगैरह, दही का मंथन वगैरह करते हैं, अपने घरों को संभालते हैं, ऐसे कई कार्य हैं वैकुंठ जगत में करने के लिए, और ये इन कार्यों को कौन जान सकता है, जो भक्त है वही जान सकता है, जो भक्त नहीं है, जो मायावादी है, वो तो सोचते हैं कि कोई विविधता है ही नहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में, कि केवल निराकार एक ज्योति है बस, इसमें कोई विविधता नहीं, वैरायटी नहीं है कोई, और इसलिए वो कहते हैं कि वहां पे कोई वैकुंठ लोक है ही नहीं, और वहां कोई लीला वीला कुछ नहीं चल रही है। तो वो कहते हैं कि भगवान का सामने देख के अब क्या करेंगे, उनको पता नहीं कि क्या करना है, बहुत सेवा है, आगे चल के लीला है, वहां पर लीला में शामिल होना है भक्तों को, इसलिए मायावादी लोग जो होते हैं वो नहीं जानते कि मुक्ति के बाद क्या होता है, वो सोचते हैं मुक्ति के बाद सब कुछ खत्म, आध्यात्मिक आत्महत्या प्रभुपाद जी कहते थे। जब साधारण दृष्टि से कोई आत्महत्या करता है तो अपने शरीर का नाश कर देता है, परंतु आध्यात्मिक आत्महत्या का मतलब है आत्मा का तो नाश नहीं होता, परंतु आत्मा के दासत्व की भावना, आत्मा के भक्ति की भावना का विनाश होता है, क्योंकि आत्मा अभी केवल निराकार में एक अणुमात्र रूप में रह जाता है, और जैसे हनुमान कहते हैं फिर दास और प्रभु की भावना रहती ही नहीं है, इसलिए हमें इस बात में, इस सिद्धांत में बहुत ही पक्का रहना चाहिए। तो तो वो सन्यासी का प्रवचन का शीर्षक ही था कि आप पूर्ण हैं, आप अपने आप को कम नहीं समझिए। ये वैष्णव लोग कहते हैं दास अनु दास दास, अरे क्या दास, तुम तो प्रभु हो तुम तो स्वामी हो, तुम तो पूर्ण हो, तुम परम सत्य हो, तुम ही सब कुछ हो, इसलिए यही सब कुछ है। और जिस तरह से वो बात करते हैं सबको हिला डालते हैं, जैसे ये राजनीति लोग जैसे मंच पे खड़े होकर कैसे सबको हिला डालते हैं ना, वैसे ये लोग प्रवचन देते हैं इस प्रकार से, कोई साधारण व्यक्ति बेचारा जाए वो तो बिल्कुल कन्विंस हो जाएगा कि हाँ मैं तो परम सत्य हूं, मैं ही पूर्ण हूं, और मैं अंश हूं, कह रहे नहीं तुम थोड़ी अंश हो, तुम्हें तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि तुम भाई कुछ छोटे हो, तुम तो हो बहुत बड़े, अपने आप को जानते नहीं हो तुम। तो इस प्रकार से ये लोग भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किसी के भी प्रवचन सुनने को नहीं जाएं। हमारे लिए इस्कॉन है, प्रभुपाद जी है, एक सुरक्षित वातावरण रखा है हमारे लिए, बस यही ठीक है हमारे लिए। बाहर टीवी भी चलाते हैं तो कितने सारे लोग प्रवचन देते हैं, अब वो वास्तव में भक्त है नहीं है नहीं पता। और एक बहुत प्रसिद्ध भक्त थे, भक्त नहीं कहलाते साधु थे, और हम उनसे एक बार मिलने गए थे। उनको अच्छा नहीं लगा कि हम ब्रह्मचारी हैं इस संस्था में, तो बहुत हमको समझा रहे थे। फिर हम कहीं गए थे तो उनका ही टेप चल रहा था, और उन्होंने कहा ये जो है सज्जे, ये जो साधु है बहुत अच्छे भक्त हैं, आप लोग की तरह ही ये बहुत ही महामंत्र करते हैं और भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। तो हम तो जानते थे, लेकिन हमने सोचा ठीक है कम से कम इस्कॉन के विरुद्ध हुए होंगे, लेकिन भक्ति तो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हमने सोचा ठीक है, उस समय हम नए नए भक्त थे, तो टेप चला रहे थे, तो हम कुछ काम से गए थे वहां, तो हम सुनते रहे काम करते करते। लेकिन टेप का अंत हुआ, वो क्या करते थे बीच में भजन, फिर थोड़ा प्रवचन, फिर भजन प्रवचन, ऐसा करते थे। तो सारा कैसेट समाप्त हो गया, 90 मिनट का कैसेट था, और केवल अंत के 15 सेकंड में फिर उनका आखिरी प्रवचन के लास्ट पार्ट में वो कहने लगे, फिर जो है जीव पूरी तरह से अपने भगवान में लीन हो जाता है, सब खत्म हो गया है। यहां तक सोच रहे थे भक्त है भक्त है भक्त है, लेकिन जब मूल पॉइंट पे पहुंचे तो क्या कहा उन्होंने, सब मजा किरकिरा हो गया, सब गड़बड़ हो गया। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो सब कोई हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम लोग जो करते हैं वो भी वो लोग करते हैं। परंतु अंतिम इनका सिद्धांत क्या है, मुक्ति के बाद क्या। इसलिए यहां पर हनुमान जी कह रहे हैं, मैं ऐसा कोई चीज नहीं करना चाहता जिससे कि मेरा जो संबंध है आपके प्रति दास और प्रभु का, वो मुक्ति के बाद भी नष्ट न हो, ऐसा कह रहे हैं ना हनुमान जी। तो हनुमान जी मुक्ति के बाद भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए और इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, ठीक है। हाँ अवश्य मिल सकता है आपको, मैं दे दूंगा, कल लिखा लेंगे उसको। अहम दासः इति अमन विलुप्यते, तो ये नष्ट हो जाता है, ये अहम दास की भावना ये नष्ट हो जाती है मुक्त होने से। ये मूल भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक आपको कल बताएंगे, तो अभी आप सब सावधान रहेंगे ना, कहीं और प्रवचन सुनने नहीं जाएंगे ना, केवल उस कौन में सुनिए बस, ठीक है। इच्छा नहीं होती है, बस यही रहिए, संतुष्ट रहिए। इसी प्रभुपाद जी ने हमारे लिए एक अच्छा सा आंगन बना लिया, कंपाउंड बना लिया है, इसके भीतर इसकी सुरक्षित वातावरण में रह के हमें भक्ति भक्ति लता बीज का अनुशीलन हम करते रहे, भक्ति लता का, ठीक है।
अभी पिछले हफ्ते में जब मैं था गांव में, तो वहां
और ऐसे एक हमारे मित्र हैं जो मुंबई में स्वाध्याय जो चलाते थे, उससे मेरी चर्चा हो रही थी इस उपनिषद पर। तो बात करते करते जब एंड पॉइंट पर पहुंचे तो मैंने कहा कि जीव जो है वो कृष्ण का नित्य दास है। तो वहां पर आते ही वो दास के ऊपर रुक गया और कहा कि अरे दास को कहेंगे तो वो व्यक्ति अपने आप को हीन समझने लगेगा। तो पता चल गया कि ये तो, जबकि वो पूरी तरह से भगवद गीता पर ही बोलते हैं और कृष्ण को ही मानते हैं।
बिल्कुल, इसलिए मैं बहुत सावधान होना चाहिए। गीता भागवत के ऊपर क्यों ना बोल रहे हों, लेकिन अंतिम उनका सिद्धांत यही रहता है। और कई बार कभी धुआंधार प्रवचन देते हैं, ये सन्यासी बड़ा धुआंधार प्रवचन दे रहे थे। वो आसन पे बैठ के नहीं बोल रहे थे, हाथ में माइक लिया था और सारे मंच पे स्टेज पे ऐसा ऊपर चलते चलते वो, फिर बीच में कभी यूं घूम के कुछ ऐसे करेंगे, तो बड़े प्रभाव, बड़ा प्रभाव हो रहा था सारे श्रोतागणों के ऊपर। और बोलने में बड़े निपुण थे, इसलिए ऐसा प्रभाव पड़ रहा था सबके ऊपर। तो हर एक व्यक्ति जो भी निकला होगा वहां से सोच रहा होगा मैं पूर्ण हूं, ऐसा सोच के निकला होगा। और बाहर हम किताबें दे रहे हैं कि हम दास हैं, पूर्ण नहीं है। ठीक है, हाँ जी। नम्र होने में कोई नुकसान नहीं है, परंतु इतना ही है कि हमें अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। नम्र होते होते ऐसा ना हो कि हमारी भक्ति डावाडोल हो जाए, कि उसके मायावाद दर्शन सुनने की आवश्यकता नहीं है, न ही उसके साथ तर्क करने की आवश्यकता है। अगर उसके विचारों का खंडन करना है तो हमें देखना चाहिए कि हमारी जो भक्ति में श्रद्धा है वो उसके मायावाद के श्रद्धा से बढ़कर होना चाहिए। उसके मन में जो श्रद्धा है मायावाद दर्शन के प्रति, हमारे भक्ति में जो दर्शन है उसे कम होना चाहिए। अगर हमारी भक्ति में श्रद्धा उतनी कमजोर, इतनी शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, तो फिर हो सकता है कभी हम थोड़ा बहुत हिल भी जाएं। ऐसे हो सकता है कि न जानते हुए भी जब वो तर्क उनके ऐसे होते हैं, शंकराचार्य ने ऐसे, आखिर है वो शिव जी के अवतार, बड़े बुद्धिमान है, तो ऐसे वो तर्क प्रस्तुत किए हैं और ऐसे व्याकरण आदि का ऐसे घुमा फिरा के वो बात करते हैं कि मन में प्रभाव पड़ ही जाता है, एक संशय होने लगता है, अरे हाँ ये तो कह रहे थे वो सही है। हो सकता है सही है, क्या भगवान कभी व्यक्ति हो सकते हैं? एक भक्त बता रहे थे हमें कई साल पहले, इस्कॉन के भक्त, इंग्लैंड के हैं वो, कह रहे थे कि इस्कॉन आने के पहले मैं एक मायावादी संस्था में जाता था और वहां वो लोग ऐसा ही दर्शन बताते थे, और अभी मुझे इस्कॉन में हुए 25 साल हो गए, लेकिन फिर भी मुझे ये स्वीकार करने के लिए कष्ट हो रहा है कि भगवान एक व्यक्ति है। मैं मानता हूं, मैं सब करता हूं, लेकिन फिर भी वो कभी कभी एक संशय मन में आ जाता है कि भगवान कैसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसका मतलब वो बोल रहे थे कि मायावाद कितना खतरनाक है, इसलिए महाप्रभु ने कहा है मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। वो कह रहे कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं मेरे जप आदि से इस विचार को नष्ट करने के लिए, परंतु यह है इतना जबरदस्त, इसका दिमाग पर जो असर जब पड़ जाता है तो व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वैष्णवों को चाहिए कि अपने भक्ति लता की रक्षा के संरक्षण के लिए सदैव भक्तों में रहे और केवल कृष्ण कथा ही सुने। अगर खंडन करना भी है तो उत्तम अधिकारी, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मजबूत है अपने सिद्धांतों में, ऐसे व्यक्ति जाए, फिर भी नहीं जाना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं कि महाभागवत को भी नहीं जाना चाहिए मायावादी भाष्य सुनने के लिए।
ट्रेन में अगर
थोड़ा जो ज्यादातर लोग जो होते हैं ना मासूम होते हैं, उनको ज्यादा पता नहीं होता है और उनको थोड़ा समझाने से सीधे हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रचार करना कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर भी आपको देखना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर मायावाद भाषा ज्यादा जानता हो तो भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जो अल्प ज्ञानी है इस बारे में थोड़ा बहुत ही उनको पता है तो ठीक है, उनको प्रचार करिए, उनको सही रास्ते पर लाइए, लेकिन जो बिल्कुल पक्के हैं इसमें उनसे थोड़ा दूर रहिए, है ना। इसलिए प्रचार करते समय ऐसा ना हो कि उनका प्रचार हमारे ऊपर असर करे। तो ये भक्ति का सिद्धांत, इसलिए षड गोस्वामियों ने इतने, इसलिए प्रमाण इतने दिए रूप गोस्वामी ने। हमारे मन में विचार आएगा ठीक है एक बार दो बार दो तीन प्रमाण दिए होते, ये 20-25 प्रमाण क्यों दिए हैं। तो कारण यही है ताकि हमारे मन में ये स्पष्ट बात बैठ जाए कि ऐसा ही है। कुल मिलाकर तो 20-22 हो जाते हैं। और भी हैं आगे, कितने सारे उदाहरण दिए हैं। ठीक है, आज काफी लेट हो गया, क्षमा कीजिए। कल क्या है, रविवार है ना, तो कल छुट्टी, ठीक है, भक्ति से छुट्टी नहीं, केवल क्लास से छुट्टी, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।